ओम शांति, ओम शांति। सबको याद होगा आज कौन सा दिन है? सतगुरुवार। आज फुल मून है, पूर्णिमा है। पूर्णिमा का चंद्रमा आज आकाश की शोभा को बढ़ा रहा है और हम सभी इस विश्व गगन में चमकते हुए सितारे बनेंगे। पहले मैं आप सभी को याद दिला दूं, बाबा हम सभी को दो होमवर्क देकर गए हैं, याद है सभी को? निर्विघ्न जीवन, याद है ना? और अपने अपने स्थान को निर्विघ्न बनाना, चाहे वो हमारा ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, माताओं का घर है, बहनों का सेंटर है, सबको निर्विघ्न बनाना। और दूसरा था इंपॉर्टेंट, वो भी अपनी किसी कमी को, बाबा ने तो कहा था यहीं छोड़ के जाओ, उसमें दो बातों पर ध्यान भी दिलाया था, व्यर्थ संकल्प और क्रोध, इनको छोड़ के जाना है। तो सभी इस चीज पे ध्यान देंगे। और दो विशेष धारणाएं थी इस पूरे सीजन में, तीन थी, वो भी मैं आप सबको याद दिला दूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बाबा ने बार बार कही, सदा खुश रहना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी सदा संतुष्ट रहना है। कल की मुरली में शायद था, वरदान में मस्तक के बोर्ड पर क्या लिख दो? संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। रहना भी इंपॉर्टेंट चीज है और संतुष्ट करना भी इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी बात जो इस सीजन की मुख्य बात थी, बेफिक्र बादशाह बनो। तो इन सब बातों पर हमें बहुत ध्यान देना है। बाबा से हमारा बहुत प्यार है, इसका अर्थ है उसकी मुरली से भी बहुत प्यार हो, और इसका अर्थ है जो वो मुरली में कहे उनसे भी बहुत प्यार हो। हमें वो चीज प्रिय लगती हैं, इसका सीधा सा सीधा तात्पर्य होगा हम उन चीजों को धारण करने का संपूर्ण पुरुषार्थ करते हैं। तो मैंने आपको कहा आज पूर्णिमा का दिन है, फुल मून, संपूर्ण चंद्रमा मनुष्य के मन को, नैनों को बहुत आकर्षित करता है। आप बाहर जाएंगे अभी, मुझे अभी किसी ने याद दिलाया कि देखो सामने चांद फुल, तो पूर्णिमा का चंद्रमा आकर्षित करता है। एक कला भी कम हो, आकर्षण कम हो जाता है। कल आप देखना ध्यान से चंद्रमा को, वो आकर्षण बिल्कुल नहीं होगा जो आज है। हालांकि कला एक ही कम होगी, कल 14 थी, एक कला कम थी, पूर्णिमा जैसा ही लगता था, परंतु वो आकर्षण नहीं था जो आज है। आप देखना यहां से निकलकर बाबा की प्रत्यक्षता, इस संसार से अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाएगा जब हम संपूर्ण होंगे। पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह संसार को आकर्षित करेंगे। बाबा का ये बहुत सुंदर महावाक्य, बहुत पुराना, तुम्हारी संपूर्णता का प्रकाश संसार से अज्ञान के अंधकार को नष्ट करेगा। तो सेवा करना एक फील्ड, दूसरों को ज्ञान देना, बाबा का परिचय देना, उसके अवतरण का संदेश देना, पवित्र बनने का संदेश देना, ये भी बहुत सुंदर बात है। लेकिन इन सब बातों को आत्माएं ग्रहण तब करेंगी जब वो हमारा ऐसा स्वरूप देखेंगी। इसलिए इसी जन्म में भी और पहले भी बाबा ने अनेक बार कहा, चेहरे और चलन से सेवा करो। सत्य तो यही है कि हमारी स्थिति ही दूसरों को आकर्षित करती है। हमारा कोई भी मनोविकार, क्रोध, हमारी बहुत इच्छाएं, हमारा बोलने का गलत तरीका आत्माओं को बाबा से दूर ले जाता है। तो आज हम चर्चा करते हैं, हमें संपूर्ण बनना है, पूर्णिमा का चंद्रमा, उसमें वो सब बातें हैं जो भविष्य में हमारे देव स्वरूप का गुणगान किया जाता है। सर्वगुण संपन्न, बोलो, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, 5 बातें हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन एक साथ हमारे जीवन में आ जाती हैं जब हम पवित्रता को धारण करके योगयुक्त जीवन जीते हैं। हमें कुछ थोड़े से गुणों पर विशेष ध्यान देना है जीवन में, उसमें है हमें बहुत सहनशील बनकर रहना है। जिसे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना हो, जिसे महानता के शिखर पर पहुंचना हो, जिसे हर फील्ड में सफलता को प्राप्त करना हो, उसे सहनशील तो होना ही पड़ेगा। ठीक बात है, बिना सहनशीलता के अनेक कठिनाइयां जीवन में आती हैं। माताएं सेवा करने आती हैं, ठंड बहुत है, हम तो रह नहीं सकते, चली जाती हैं, दूसरे लोग सेवा करते हैं। यहाँ के भोजन में तो लाल मिर्ची नहीं है, हमें तो खाने में मजा नहीं आ रहा है, हम तो जाते हैं। छोटी सी चीज, एक जीव के रस ने आत्मा को सेवा के भाग्य से वंचित कर दिया। सेवा में संगठन में भी रहना पड़ता है, भाई बहने सभी एक ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में सोते हैं, उसमें भी कई चीजें सहन करनी पड़ती हैं, जो सहन नहीं कर पाते वो नहीं सेवा करते। हर फील्ड में, चाहे वो साधनाओं का मार्ग हो या सेवा का मार्ग हो, भाई बहने गांव गांव में सेवा करने जाते हैं, प्रदर्शनियां लेकर जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट के तहत जाते हैं, सहन करना पड़ता है। कहीं धूप पड़ रही है, कहीं रहने को अच्छी व्यवस्था नहीं है, कहीं लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है, कहीं वो हमारी सुंदर बातों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, ये सब भी हमें सहन करना पड़ता है। जानते हैं ना, फील्ड में रहते हैं भाई लोग, सब सुनना भी पड़ता है और सहन भी करना पड़ता है। हम ये नहीं सोचते कि इतनी सुंदर बातें, इतना अच्छा बाबा का ज्ञान लोग क्यों नहीं सुनते। हम जानते हैं सत्य को स्वीकार करने वाले इस संसार में थोड़े ही होते हैं, सभी लोग विषय विकार विकारों की वैतरणी में डूबे हुए हैं, उसे निकलना चाहने वालों की संख्या बहुत कम होती है। इसलिए संसार में भी एक बात कही गई है कि किसी शक्तिशाली सेना को परास्त करना सहज हो सकता है, लेकिन विकारों को जीतना बहुत कठिन है। किसी सन्यासी की बचपन में हम कहानी सुना करते थे, वो कहते थे शेर की गुफा में रात को जाकर शेर के साथ निवास करना सहज हो सकता है, लेकिन काम वासना को जीतना सहज नहीं है। लेकिन बाबा ने इन सबको सहज बना दिया है। हमारी माया से युद्ध भी है, लेकिन माया को जीतने की शक्ति भी हमारे पास है। जो फुल मून बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी होने का हमारा संकल्प है, और वो हमें बनना है। हमारी पवित्रता क्या क्या करेगी जरा विचार कर लें। हमारी पवित्रता केवल हमारे लिए नहीं है। देखो बाबा मुरलियों में एक छोटी सी बात प्राय कहते रहते हैं, तुमने कहीं सेवा की, ज्ञान दिया 3 दिन, लोग नहीं आए, लेकिन तुम्हारी ये मेहनत निष्फल नहीं रहेगी। जिनके अंदर तुमने ज्ञान का बीज डाल दिया वो किसी भी समय पर आकर अंकुरित होगा ही। ऐसे ही किसी ने अपने जीवन में थोड़ी भी पवित्रता अपनाई, 1-2 साल के लिए भी अपनाई, समझ लें उसने भगवान के कार्य में सहयोग दिया। उसका भाग्य थोड़ा भी सतयुग का स्वर्ग का निश्चित हो गया। तो हम सभी पवित्रता की बात पर बहुत ध्यान देंगे, इन पर बहुत कम चर्चाएं हमारे पास भी होती हैं क्लासेज में, लेकिन हमारा मूल सब्जेक्ट है पवित्रता। माया से हमारा युद्ध भी है तो हमें पहले इसके महत्व को जान लेना चाहिए। ये पवित्रता प्रकृति के लिए वरदान है। प्रकृति को अगर कोई चीज सत्वप्रधान बनाएगी तो वो कौन सी है? हमारी पवित्रता। धर्म की शक्ति पवित्रता है। सभी ध्यान देंगे, जो पवित्र बने हैं सब बैठे हैं यहाँ। देखो हमारे पास ही ऐसी सभा होती है जिसमें सब पवित्र आत्माएं बैठी होती हैं। संसार में किसी साधु महात्मा की सभा भी ऐसे होती ही नहीं, 2-4 पवित्र सन्यासी बैठे होंगे, बाकी सब वैसे ही होंगे। तो सभी अपने महत्व को समझ लें, हमने पवित्रता का व्रत लिया है, प्रकृति उससे पावन हो रही है। साथ में इसी के साथ मैं ये जोड़ दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सभी पवित्र आत्माएं, सभी भाई बहनें जो योग का अभ्यास करते हैं, अपनी योग साधनाओं को सरल बनाने के लिए भी और बहुत बड़ा योगदान देने के लिए भी, रोज 10 मिनट प्रकृति को पवित्रता का दान अवश्य दें। एक तो हमारा जीवन पवित्र जीवन, उसके लिए पवित्रता का वरदान है, लेकिन हम पवित्र वाइब्रेशंस से 10 मिनट दिया करें, ये बहुत बड़ा काम होगा। जिस प्रकृति ने 5000 साल हमारी पालना की है, अब उस प्रकृति की शक्तियां नष्ट हो गई हैं, देख रहे हैं ना सब, आकाश भी दूषित कर दिया मनुष्य ने, जल भी दूषित कर दिया, वायु भी दूषित है, धरती भी कमजोर है, अपनी अन्न उगाने की शक्ति खो चुकी है, पांचों तत्व दूषित हुए हैं, कमजोर हुए हैं। हमारी पवित्रता की शक्ति इन्हें फिर से फुल बनाती है, सत्वप्रधान बनाती है। तो रोज 10 मिनट पसंद है? और कैसे देंगे और क्या फायदा होगा इससे, ये भी ध्यान रखें। कैसे देंगे? सब एक सुंदर संकल्प करेंगे, मैं 2-3 संकल्प बता देता हूं। मैं पवित्रता की देवी हूं, स्वमान, या मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, या मैं पवित्रता का सूर्य हूं, या मैं परम पवित्र आत्मा हूं। 4 स्वमान हैं ये पवित्रता के। इसमें अपने को स्थित करके, यानी इसकी स्मृति में आकर बाबा से पवित्र किरणें लेंगे, वो पवित्रता का सागर है, इस संकल्प से योग लगाएंगे, उसकी पवित्र किरणें प्राप्त करेंगे और फिर अभ्यास करेंगे। पवित्र किरणें हमसे चारों ओर फैलती हैं, प्रकृति के सभी तत्व इसको ग्रहण करते हैं। लेकिन मोटी सी बात पर ध्यान दें, सूक्ष्म भी है मोटी भी है, हम धरती पे रहते हैं सदा, हमारे कदम निरंतर धरती को छूते हैं, हमारी पवित्र किरणें पैरों से निकलकर धरती में समाती रहती हैं। हम पवित्र हैं, हवा में रहते हैं, हवा हमको टच करके भी पवित्र होती है। हमारे नयनों से पवित्र किरणें निकलती हैं, अग्नि तत्व भी पवित्र होता है, हमारे वाइब्रेशंस पवित्र वाइब्रेशंस अंग अंग से चारों ओर फैलते हैं और प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन करते हैं। ये महान सेवा सभी रोज किया करें, टाइम फिक्स करके कर लें या जब भी मौका मिले तब कर लें। इससे योग में भी बहुत आनंद आएगा और प्रकृति जिसने हमारी पालना की है हम उसका रिटर्न करेंगे, बहुत सुंदर परिणाम हमारे सामने आएगा। जब विनाश काल होगा तब यही प्रकृति हमें पुनः मदद करेगी। देखो कल की मुरली में आपने सुना हो, सुनाई है, क्या होगा विनाश में? आकाश वो सागर धरती को हप कर लेगा, नीचे से सागर ऊपर से बरसात, कहीं भूकंप होंगे धरती फटेगी, देखो बादल भी फट जाते हैं, आकाश से भी अग्नि वर्षा होगी, सागर भी बहुत कुछ नष्ट करेगा, कहीं अर्थक्वेक्स होंगी भूकंप होंगे, सबको जाना तो होगा, लेकिन उस समय प्रकृति उन आत्माओं को बहुत मदद करेगी जिन्होंने उसकी सेवा की होगी और जिन्होंने उसको कष्ट दिया है, जिन्होंने उसे दूषित किया है उन्हें वो नष्ट कर देगी। चारों ओर पानी भरा होगा लेकिन उनको पीने को नहीं मिलेगा और जिन्होंने उसकी सेवा की होगी उनके पीने के पानी के भंडार भी भरपूर रहेंगे, वो दूसरों को भी पानी का दान कर सकेंगे। प्रकृति समय पर उनकी सुरक्षा भी करेगी, भूकंप होंगे अर्थक्वेक्स होंगे तो वो सुरक्षित भी रहेंगे। एक पवित्रता के बारे में बहुत सुंदर बात मुझे आप सबको याद दिलानी है। हमारे डॉक्टर हैं सतीश गुप्ता, उन्होंने क्लास में सुनाई थी, अभी वो तो सबने नहीं सुनी, मैं ये वैज्ञानिकों की बात सुना देता हूं, इससे आप सबको बहुत नशा भी चढ़ेगा। वैज्ञानिकों को, शायद रशिया के वैज्ञानिकों को ही एक बहुत सुंदर थीम दी गई कि जब प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, बाढ़ आती है, तूफान चलते हैं, भूकंप हो जाते हैं, तो जो पवित्र स्थान है संसार में, आश्रम है, चर्च है, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, ये सब सुरक्षित रह जाते हैं, क्या कारण है? तो वैज्ञानिकों ने इस पर जो रिसर्च की और जो रिजल्ट दिया वो ये था कि इन पवित्र स्थानों से जो पवित्र तरंगे चारों ओर फैलती हैं वो विनाशकारी तरंगों को रोक देती हैं, वापिस कर देती हैं, रिपल्स कर देती हैं। क्लियर है ना बात? ध्यान दें, अब मैं जिसलिए आपको ये बात सुनाई, विनाश काल में जिस स्थान पर एक बहुत अच्छी पवित्र आत्मा होगी उससे निकलने वाले पवित्र वाइब्रेशंस, उससे चारों ओर फैलने वाली पवित्रता की तरंगें क्या करेंगे? विनाशकारी तरंगों को वापस कर देंगी, क्योंकि इन मंदिरों से भी बहुत ज्यादा पवित्रता तो आत्माओं में होगी। मंदिरों में तो पवित्र लोग जाते भी नहीं, केवल मूर्तियां हैं, तो सभी अपनी पवित्रता के महत्व को बहुत समझ लें और इस पर ध्यान दें। हमारे नैनों से निकलने वाले पवित्र वाइब्रेशंस अगर पानी पर पड़ते हैं तो पानी बहुत बड़ी दवाई बन जाता है, अनेक रोग उससे ठीक हो सकते हैं। इसलिए अपनी पवित्रता को निरंतर बढ़ाते चलना है, ये चमक है। कल बहुत अच्छा लग रहा था, देवताओं के बारे में बहुत चर्चाएं थी, कल ही थी शायद, पवित्रता की बात थी देवताओं की, उनके शरीर सतो प्रधान होंगे तो कंचन की तरह चमकते रहेंगे, चेहरों पर दिव्यता और तेज होगी, ये सब पवित्रता का प्रभाव होगा ना। रोग और दवाइयों का तो वहां प्रश्न ही नहीं है, समस्याएं अपराध और जेल और ये पुलिस और मिलिट्री, इनकी तो आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे सुंदर संसार में हम जा रहे हैं जहां हमें कमाने की चिंता नहीं, खाने की भी चिंता नहीं। पता है माताओं को शुरू में भोजन पकाना नहीं पड़ेगा, इसलिए माताएं बिल्कुल निश्चिंत रहेंगी। माताओं का सबसे बड़ा काम घरों में यही होता है ना, क्यों? प्रकृति ही इतनी चीजें देगी। देवता तो शुरू के देवता, सतयुग के पहले जन्म वाले तो नेचर क्योर पर जिएंगे, आनंदित होंगे। आजकल नेचर क्योर कराते हैं ना, फल बहुत सुंदर चीजें कच्ची ही खाने की इतनी स्वादिष्ट होंगी कि पकाने की जरूरत ही नहीं। क्यों पका के मेहनत करेंगे, क्यों आग जलाएंगे देवता, धुआं क्यों उठेगा वहां, इसकी जरूरत नहीं होगी। देवलोक में कोई कष्ट होता नहीं है। तो ऐसी सुंदर दुनिया कौन रच रहा है हमारे लिए, सोचो उससे हमें कितना प्यार करना चाहिए। जो हमारे लिए हथेली पर स्वर्ग लेकर आया है, जो स्वयं हमारे घर में मेहमान बनकर आया है, जो हमें, हम उसके बच्चे हैं ना, माँ बाप भी अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं, वो हमारा माता पिता होने के नाते हम सब आत्माओं की इतनी केयर कर रहा है, माया से भी संभाल कर रहा है। और क्या, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है जब मैं किसी भी स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो मेरे पास आते हैं कि वो कोचिंग के लिए, हायर स्टडी के लिए, एमबीए में एडमिशन के लिए, एमटेक में जाने के लिए कितनी कोचिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं। है, बैठे हैं यहाँ कई स्टूडेंट्स, करते हैं ना। और हम सोचो, अब हम अच्छी तरह सोचो, मैं फिर कह रहा हूं, हम उन्हें कितना मिलेगा, 50,000, किसी को और आगे चल के 1,00,000 मिलने लगता आजकल, वो भी सुखदाई पैसा तो आजकल है नहीं, पैसे में तो सुख मिलता भी नहीं है, नष्ट हो जाता है बहुतों का। हमें बाबा ऐसी दुनिया में ले जा रहा है कि 2 युग तक तो कमाना ही नहीं पड़ेगा, सोच लो। और पढ़ाई भी ऐसी जिसमें मेहनत नहीं, कोचिंग नहीं, ट्यूशन नहीं, रात दिन जाग के पढ़ना नहीं, है ना आनंद। द्वापर युग भी सहज बीतेगा पूरा, कलयुग में आकर थोड़ी बहुत आजीविका के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने सुना अखबार में, वो अखबार में आया इतिहास का एक वृत्तांत कि जब अकबर का राज था भारत में तो एक मजदूर की मजदूरी कितनी होती थी मास के, इसे आप सोचना, 1 रुपया। 1 रुपये में भी उसका मांस चलता था, कितना सस्ता होगा। एक एक पैसे में चीजें मिलती थी, अनाज भी बहुत सारा 1 पैसे में, बल्कि बहुत चीजें तो बिना पैसों के ही मिलती थी, लेन देन होता था आपस में। ऐसी सुंदर दुनिया में बाबा हमें ले जा रहा है जहां हमारे पास अथाह धन संपदा होगी, जिसकी हम आजकल कल्पना भी नहीं कर सकते वो कितनी होगी। याद हो आपको, बाबा ने कहा था नजदीक पिछले साल एक मुरली में, जितना धन सारी मुंबई में है इतना तो आपके महलों में 2-4 हीरे लगे होंगे, सारी मुंबई का धन। खुश हो गए ना, माताओं को खुशी हुई, साड़ियों में भी हीरे जड़े होंगे, पाउडर भी सोने का होगा। कल मैं सुन रहा था बाबा की बात, ये सत्य बात कह रहा हूं मैं, पाउडर सोने का होगा, सोने का पाउडर बनेगा और कुछ उसमें मिला देंगे बहुत अच्छा रहेगा, देवताओं के शरीर कंचन की तरह चमकेंगे, तो कंचन से भरे हुए तो होंगे ना, वैसे ही खाएंगे नहीं बस कंचन, खाने की बहुत सारी चीजें होंगी। उस बाबा से हम कितना प्यार करें, सोचो। हमने कभी सोचा था कि हम भगवान के इतने समीप आ जाएंगे, वो हमारे इतने समीप आ जाएगा। दादी जान की एक अनुभव सुना रही थी, कोई प्लेन में किसी यात्रा में कोई व्यक्ति उनके साथ बैठा था, ऐसे ही बात कर रहा था। उसने कहा दादी को कि दादी जी आपको देखकर आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है आप भगवान के बहुत समीप हो। दादी ने तो नशे से उत्तर दिया, आप भी हो सकते हो। कितनी समीपता हो गई, वो हमारा हम उसके है। माताओं को नशा, कितनी बड़ी प्राप्ति हो गई जो बाबा ने कहा सदा खुश रहना। अगर हम इस एक चीज को ही याद करें, इस जीवन में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पाया, सोचो क्या क्या देखा इस जीवन में जो चारों युगों में कभी नहीं दिखता सिंह भाई, वो इस जीवन में इन आंखों से देखा। भगवान युग कैसे बदलता है, वो नए संसार की रचना कैसे करता है, सुंदर प्रोसीजर जिसको कोई समझ नहीं सकता, जिसकी शास्त्रों में चर्चा नहीं न कोई कर सकता, जिसके बारे में वैज्ञानिक, इतिहासकार, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक कुछ नहीं जान सकते, वो हम सभी आंखों से देख रहे हैं। देख रहे हैं, देख रही हैं माताएं, भगवान कैसे युग बदल रहा है, कितना सूक्ष्म तरीका है उसका, एक एक आत्माओं को पावन बनाना। बाबा कहते हैं ना, अभी भी आया था, बाप एक एक पर मेहनत करते हैं, बच्चे बाप की इस मेहनत को व्यर्थ न गवा देना। भगवान मेहनत करता है, कोई सोचेगा? लोग तो सोचते हैं भगवान तो चुटकी बजाए सब काम हो जाए, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो भी अपने बच्चों को तैयार करने के लिए मेहनत करता है, मेहनत करता है बहुत। मुझे किसने बताया महादेव सीरियल आता है तो महादेव स्वयं और पार्वती कार्तिकेय को तैयार करने में कितनी मेहनत कर रहे हैं। बाबा भी हम सभी बच्चों को तैयार करने में मेहनत करता है, हम बस केवल तैयार होने का संकल्प करें। मैं सोचा करता था बाबा के मन में कितनी श्रेष्ठ इच्छा है कि मेरे बच्चे बाप समान बन जाएं, है ना? बाबा अपनी ये शुभकामना हमारे सामने व्यक्त करते रहते हैं। मैं सोचता था, आप भी सोचो, कि जितनी श्रेष्ठ इच्छा भगवान के मन में है कि ये मेरी महान आत्माएं मेरे समान बन जाएं, उतनी ही श्रेष्ठ इच्छा यदि हमारे मन में भी हो जाए कि मुझे बाबा जैसा बन जाना है, जब दोनों की इच्छाएं समान हो जाएंगे तो दोनों भी समान बन जाएंगे। ये गहरी बात, हम अपने से पूछें और अपने को देखें, क्या हमारे मन में सचमुच उस जैसा बनने की उतनी इच्छा है जितनी इच्छा उसको हमें बनाने की है। हमारे अंदर भी इच्छा होनी चाहिए, तो हम अपने जीवन में उन सभी गुणों पे ध्यान दें जो हमें पूर्णिमा के चंद्रमा के समान बनाएंगे, सभी कलाओं से हमें युक्त करेंगे। और वो गुण हैं, गिन ले उन्हें, मुख कैसा हो, पिछली मुरली में था बाबा का, नयन कमल, नयन वो हस्त कमल, मुख कमल, चरण कमल, सबका गायन है ना देवताओं का, बिल्कुल न्यारे और प्यारे, तो मुख कमल कैसे कि हमारे मुख से क्या निकले, ज्ञान रतन, हमारे मुख से निकले वरदानी बोल, हमारे मुख से ऐसे कमल झरें जिससे सभी को सुगंध महसूस हो, जिससे सभी के दुख दर्द समाप्त हो जाएं, हमारे मुख से निकले हुए बोल दूसरों के लिए यादगार बन जाएं, हमारे मुख से निकले हुए बोल महावाक्यों समान बन जाएं, जैसे भगवान के महावाक्य हैं वैसे ही हमारे बोल हो जाएं, ऐसा हमें अपने मुख को बनाना है। पहला गुण कि हमारे बोल जो हमारी स्थिति को व्यक्त करते हैं, स्थिति का पता पहले चलता है, हमारे बोल में कितनी रॉयल्टी है। दूसरी बात पर हम ध्यान दें, संस्कार। हमारे संस्कार सुखदाई हैं या दुखदाई, हमारे अंदर परेशान रहने की आदत है या प्रसन्न रहने की आदत है, हमें छोटी बातों में भारी हो जाने का संस्कार है या हर चीज को सहज समाप्त करने का संस्कार है। अपने संस्कारों पर ध्यान दें। हमारे संस्कार हमें दुनिया की ओर ले जाते हैं या हमारे संस्कार हमें दुनिया से उपराम करते हैं, इन कुछ चीजों पर ध्यान देना है। बाप समान संस्कार, बिल्कुल निर्मल सुख देने वाले संस्कार, दूसरों का कल्याण करने वाले संस्कार। तीसरी चीज पर ध्यान दें, भावनाएं। मैं गुणों से हटकर थोड़ी सूक्ष्म बातों पर आपका ध्यान दिलाऊं, हमारी भावनाएं कैसी हैं। अभी मुरली में आ चुका है, जो संतुष्ट आत्माएं होंगी, संतुष्टता पर रिवाइज कोर्स की मुरली भी चल चुकी है, संडे को, इस संडे को भी चली, इससे पिछले संडे को भी चली। जो संतुष्ट आत्माएं होंगी वो निष्काम और निर्दोष दृष्टि वाली होंगी। निष्काम भावना और निर्दोष दृष्टि, किसी का कोई दोष नहीं, किसी में कोई दोष नहीं, वे आत्माएं सबको कल्याण की भावना से देखेंगी, वे आत्माएं दूसरों को उनके महान स्वरूप में देखेंगी, न कि वर्तमान स्वरूप में। बाबा की बहुत अच्छी बात, बहुत पहली बात है, शायद 70 की बात हो। हमारे यहाँ एक सरदार जी रहते थे, अब नहीं है, बुजुर्ग थे, शरीर छोड़ दिया, वो किचन में रहते थे, रोटी बनाते थे, उनको गुस्सा बहुत आता था, प्रसिद्ध थे वो, भाई इनको बड़ा जल्दी गुस्सा आता है, लोग भी उनके गुस्से को ज्यादा माइंड नहीं करते थे, भाई उनको आता ही है बेचारे, वो भी कहते थे भाई मुझे बहुत गुस्सा आता है, ख्याल न करना आप। अव्यक्त बाबा मिल रहे थे, उसने बाबा को भी कहा, बाबा मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्या करूं। अब हम सब देखने लगे कि बाबा क्या कहेगा, तब छोटी सी जगह में बैठते थे ना सब, जितनी ये स्टेज है इतने में तो सब बैठे रहते थे बाबा के बिल्कुल सामने। तो बाबा ने उसे बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत काम आई वो, आपको भी बहुत काम आएगी, सुने आप। बाबा ने कहा, बाप सबके संपूर्ण स्वरूप को देखता है, इसलिए सदा सुखदाई है, और तुम आत्माएं वर्तमान स्वरूप को देखते हो, इसलिए दुखदाई हो जाते हो। बहुत गुह्य बात है, हमें वर्तमान में दूसरों के गुण अवगुण दिखाई देते हैं ना, संपूर्ण स्वरूप विस्मृत रहता है, तो वर्तमान उनके अवगुणों का इफेक्ट जीवन पर, मन पर, हमारी भावनाओं पर रहता है। पर अगर हमें अपनी भावनाओं को निर्मल करना है, अगर हमें अपनी भावनाओं को कल्याणकारी बनाना है, तो हम ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करें जरा। सभी महान आत्माएं हैं, सभी बाबा के पास स्वयं को परिवर्तित करने आए हैं, सभी बाबा के पास सुख लेने आए हैं, दुख तो पहले ही बहुत था, हम समझें इन बातों को, सभी बाबा के पास शांति के लिए आए हैं, तो हमें हर एक को सहयोग देना है। दुनिया से निकलकर दुनिया की अग्नि में तपती हुई आत्माएं शीतल होने के लिए बाबा के पास आई हैं, हमें उनको शीतल होने में सहयोग देना है। अगर हम भी उनके लिए अग्नि जला दें तो आत्मा तड़फ जाएगी ना, पहले ही अग्नि से तड़फती हुई बाबा की शीतल छाया में आए हैं, इससे हमारी भावनाएं बहुत सुंदर रहेंगी, हमारा दृष्टिकोण बहुत निर्मल हो जाएगा, हम सहयोगी भावना अपनाएं। एक है स्थूल में सहयोग देना, दूसरा है इस तरह सहयोग देना। और भी दुनिया में भी आप रहते हैं, विचार करें, लोग पहले ही बहुत टेंशन में रहते हैं, हमारे शब्द यदि उनकी टेंशन को बढ़ा दें तो वो कहां जाएंगे। लोग पहले ही शांति की तलाश में हैं और जिनसे उन्हें शांति मिलनी है वो भी उन्हें अशांत कर दें तो वो कहां जाएंगे। चिंतन करें सभी। इसलिए हम दूसरों की वर्तमान स्थिति को न देखकर उनकी भावनाओं को देखें। एक व्यक्ति घर से लड़कर ऑफिस में पहुंचता है, वो टेंशन में भरा हुआ है, उसका साथी थोड़ी भी गलती करता उसे क्रोध आएगा बहुत, क्योंकि वो पहले से परेशान आया है। अब ये साथी भी सोचेगा ये रोज मेरे पे गुस्सा करता है, वो भी गुस्सा करेगा, समस्या बढ़ जाएगी। हम शांति देने वाले हैं, हम दूसरों को शीतल बनाने वाले हैं, हम दूसरों को सहयोग देने वाले हैं। एक और सुंदर बात मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, बहुत सुंदर है, रोज सुननी सुनानी चाहिए। सभी भाई बहने खुद भी इसको रोज याद करें और रोज सुनाएं दूसरों को, और वो ये है, हम सभी पूर्वज हैं। इस फीलिंग को, इस स्वमान को, इस स्मृति को, इस अवेयरनेस को बहुत बढ़ाएं सभी। कौन है हम सब? माताएं पूर्वज हैं, और पूर्वजों के द्वारा होती है सबकी पालना। याद रखेंगे हम, हमारा एक एक संकल्प अनेक आत्माओं की पालना करता है। जितने सुंदर संकल्प हमारे पास होंगे, हमसे ऑटोमेटिकली दूसरों की पालना होती रहेगी। संकल्पों से पालना दें सभी को। पसंद है? सुना माताओं ने ध्यान से, या उठने वालों को देखने में लग गए? हम संकल्पों से सबकी पालना करें। हम कम से कम ये संकल्प तो कर लें, जिन लोगों को आप जानते हैं ये सभी सुखी हो जाएं। देखो इसका प्रभाव, छोटा सा संकल्प भक्ति में भी चलता है ना। हम जिन लोगों को जानते हैं उनके लिए संकल्प कर दें, ये सभी शांत हो जाएं, इनको इनके जीवन में सफलता प्राप्त हो जाए। मनुष्य क्या सोचता है? इसने मुझे तंग किया था, ये फेल हो जाए जीवन में, ये काम करने जा रहा ना, इसका काम हो ही नहीं, सोचते हैं ना। उल्टे संकल्प ज्यादा करते हैं, इसने पैसा ऐसा वैसा बहुत कमाया, देखना इसका पैसा इसको तंग करेगा, हॉस्पिटलों में ले जाएगा, इसको डॉक्टरों को जाएगा। हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं, पर नहीं, हमें अपने संकल्पों से सबकी पालना करनी है। कर्म गति के अनुसार सभी को उनके कर्मों का फल तो स्वतः ही मिल जाएगा, हमें सोचने की जरूरत नहीं। ठीक बात है? हम क्यों गलत सोचे? मैंने बाबा को देखा, आप भी देखते हैं रोज, मैंने देखा कि बाबा के पास जो भी आता है बाबा उसे प्यार करता है। एक बहुत पाप आत्मा भी आ गई, उसे जरा भी फीलिंग नहीं देगा कि तुम पापी हो, बहुत प्यार करेगा, वो भगवान के गुण गाएगा, वाह बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। क्यों? बाबा जानता है कर्म गति के अनुसार इनको इनके कर्मों का फल तो स्वतः ही मिल जाएगा, उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत कहाँ है। मैं तो प्यार का सागर हूँ, मुझसे तो सबको प्यार ही मिलेगा ना। ठंडी हवा चल रही हो बहुत, कोई कितनी भी कोशिश करे ठंडी हवा मुझे न लगे, वो तो ठंडी हवा चल रही है ना, सबको ठंडी हवा लगेगी। तो हम भी अपनी भावनाओं को शुद्ध करें, हमारी भावनाएं दूसरों की पालना करेगी। समझ रही ना माताएं? संकल्प किया करें रोज उठ के, सभी सुखी हो जाएं, सब पवित्र हो जाएं, सबके चित्त निर्मल हो जाएं। तो ये जो संसार में तूफान उठ गया है ना भारत में, पता कौन सा? बलात्कार का। बड़ी बुरी दशा इससे हो सकती है ना, सबकी बच्चियां बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, माँ बाप को डर होगा, कुछ हो न जाए इनके साथ। कितनी दयनीय स्थिति हो गई है। हम सभी इसको रोकने में समर्थ हैं। सभी एक साथ अपने पवित्र स्वरूप में स्थित होकर संकल्प करें इस संसार से ये वासनाओं का अंधकार नष्ट हो जाए। सभी संकल्प किया करेंगे, क्योंकि इसमें पुलिस, सरकारें, कोर्ट कुछ नहीं कर सकेंगी। वहां तो लोग तब पहुंचते हैं ना जब हो जाता है, और हमारे पास वो शक्ति है कि ये हो ही ना, लेकिन हम सब एक साथ मिलकर ये संकल्प करेंगे, ये काम वासना का अंधकार इस वसुंधरा से सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। वैसे भी ये अति आ गई है, और अति के बाद इसका अंत होना निश्चित है, लेकिन इसका प्रकोप बहुत भयानक हो रहा है। आत्मा इसमें जल रही है, संसार में अशांति फैल रही है, और इससे भी बुरी चीज हमारा भारत जो सबसे महान है, जिसकी सभ्यता संसार के लिए अनुकरणीय रही है, उसको सिर नीचा करना पड़ रहा है। मुझे समाचार मिले विदेशों में जो बहुत भारतीय रहते हैं उनको सुनना पड़ रहा है, तुम तो कहते हो हमारा भारत ऐसा है वैसा है, ये क्या हो रहा है तुम्हारे भारत में। निश्चित रूप से देवभूमि पर, भगवान की जन्मभूमि पर, जहाँ की सभ्यता सबसे महान रही है, वहां के लिए ये सब दृश्य लज्जाजनक है, सिर नीचे करने वाले हैं। हम सब संसार की पालना करेंगे, करेंगे तो अपने संकल्पों से, अपनी पवित्रता से, अपनी भावनाओं से, अपने सुंदर वचनों से, वरदानी बोलों से हमें संसार की पालना करनी है। बहुत अच्छी तरह सभी बाबा की इन चीजों पर ध्यान दें जो बाबा हमें होमवर्क दे रहे हैं। हम बदलेंगे, क्योंकि हम महान आत्माएं हैं, इस देव देवियां हैं, एक एक के बदलने से लाखों लोग बदलेंगे। हम अपनी ऐसी जिम्मेदारी समझते हुए अपने पुरुषार्थ की गति को तेज करेंगे। ओम शांति।